ओम शांति। फीलिंग देवी। एक बार और इस क्लास में इसी टॉपिक पे क्लास हुई है, फीलिंग देवी की शव यात्रा करके। और आज है फीलिंग देवी। ये देवी ऐसी है कि मरने का नाम ही नहीं लेती, दोबारा से फिर जन्म हो गया। फीलिंग देवी माना फीलिंग। तो कुछ चीज़ें देखेंगे कि फीलिंग किसे आती है, कब कब आती है, वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनकी वजह से हमें फीलिंग आती है। तो सब लोग ज्वाइन करेंगे। तो सबसे पहले फीलिंग उन्हीं को ज़्यादा आती है जो ज़्यादा बॉडी कॉन्शियस में रहते हैं, या जिनकी बहुत इच्छा होती है कि मुझे ये चीज़ मिलनी चाहिए, मेरे साथ ये काम होना चाहिए। क्योंकि ऐसी आत्मा जो होती है जैसे फीलिंग में आई या आते हैं, तो कहीं ना कहीं वो अपने तरीके से लोगों को देखते हैं, अपने तरीके से स्थिति को देखते हैं, और अपने तरीके से एक उम्मीद रखते हैं कि मेरे साथ ऐसा होना चाहिए। अगर उनका कोई प्रोग्राम है या उनका कोई बात है वो नहीं मानी गई, तो वो फीलिंग में आते हैं कि मैंने ये कहा था। और एक तरीका है कि ये लोग जैसे हैं, ये दुनिया जैसी है, उस तरीके से देख करके चलना। जब हम इस विधि से चलते हैं कि ये दुनिया जैसी है, हमारे आसपास के लोग जैसे हैं, उस तरीके से चलेंगे तो शायद हम सेफ रह के चलेंगे। क्योंकि मुझे पता है, एक अगर हम मेडिसिन भी लेते तो हमें पता है ये 2 साल के बाद एक्सपायर हो जाएगी, उसमें कोई फीलिंग आती है क्या कि अरे ऐसे कैसे हो गया? लेकिन हमें पता है हमारे आसपास की जो भी आत्माएं हैं या जो भी परिस्थितियां हैं, सिचुएशन है, कभी भी कुछ भी चेंज हो सकता है। आज हो सकता है जो व्यक्ति हमारे साथ बहुत अच्छा है, कल हो सकता है उसमें कुछ हमें ऐसा दिख जाए या हमारे मन पसंद ना हो, तो फीलिंग आ जाना। और ये बात ज्ञान में भी स्पष्ट है, अनुभव भी कहता है। चलो अनुभव नहीं हुआ हो, केवल ज्ञान कहता है तो मानना थोड़ा मुश्किल लगता है, पर अनुभव भी ये कहता है कि आज तो बड़ा अच्छा था, पता नहीं क्यों आज बोला ही नहीं, ओम शांति भी नहीं किया, तो फीलिंग आ गई। दूसरा, कभी कभी कुछ लोगों को फीलिंग आती है अगर उनका मजाक बनाया जाए, उसमें थोड़ी ज़्यादा आती है, उनके किसी वीक पॉइंट को। क्योंकि हम एक न्यूज़पेपर में भी थे, तो हमने एक बहुत छोटा सा केस देखा था जिसमें माँ ने बच्चे से मजाक मजाक में कुछ कह दिया और सबके सामने था वो, और उसने कुछ जाके चाकू से कर दिया, खैर वो मरा नहीं, बच गया। तो मतलब छोटे बच्चों में इतना ज़्यादा होता है कि अगर ज़रा सा भी उनके मान को या उनका कुछ लगता है कि हमारे साथ ये ठीक नहीं हुआ, बेइज्जती हुई, इंसल्ट फील हुई, तो फीलिंग आ जाती है। अब एक प्रश्न ये भी आता है कि फीलिंग आने का कारण क्या है, देह अभिमान, यह सब मोटा मोटा नहीं बताओ ना, ये तो बहुत बार सुने हैं, दबी हुई इच्छाएं, और कोई बात, अंदर से खालीपन, कमजोर मन। अच्छा, फीलिंग का कनेक्शन बाहर से है या अंदर से? दोनों ही, ज्यादा अंदर से। आपने देखा होगा, हमारे साथ भी कई बार हुआ है, कई अगर कोई साइकेट्रिक पेशेंट है, दिमागी रूप से पागल है, अगर वो हमें कुछ उल्टा सीधा बोल दे, कौन सी फीलिंग्स बाहर आती है? रहम आ जाता है, जाने दो, फीलिंग तो वो भी ना। और अगर कोई ऐसा हमारा साथी है जो हमारे साथ रहता है, हमारे साथ चलता है, हम दोनों साथ में काम करते हैं, वो अगर वैसा बोल दे तो क्यों? नॉलेज तो है, क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि ये जो साइकेट्रिक है, हमें पता है कि ये क्या है, नॉर्मल नहीं है, और जो हमारे साथ वाला है वो नॉर्मल है। पर क्या साथ वाला नॉर्मल है उस समय? छोटा बच्चा होता अगर वो तोतली भाषा में हमें कुछ उल्टा सीधा बोल दे, गाली दे दे, कैसा अच्छा सा फील होता, उससे अगर फीलिंग अलग आएगी। अगर एक दिमागी रूप से किसी ने बोला अलग फीलिंग, उसने बोला अलग फीलिंग, अगर देखा जाए हमारे पास वाली आत्मा ने अगर हमें कुछ बोला या हमारे साथ गलत व्यवहार किया, तो फीलिंग अलग आती। अगर कोई थोड़ी ऐसी आत्मा जिसको हम ज़्यादा नहीं जानते, ज़्यादा नहीं मिले, वो बोल दे, तो वो कोई फर्क नहीं पड़ता। फीलिंग का कनेक्शन ज़्यादा रहता है कि किस आत्मा को या किस बात को हमने अपने से बहुत क्लोज करके रखा है, वही बात पे किसी और को शायद कुछ भी फील ना हो, होता है ना ऐसा। क्योंकि फीलिंग का कनेक्शन या फिर जो भी हम निगेटिव फील करते हैं वो कहीं ना कहीं सब कुछ हमारे अपने मान्यता पे डिपेंड करता है, क्योंकि हमारा माइंड जो है वो राइट या रॉन्ग को ज़्यादा नहीं बिलीव करता है। उसकी मान्यता अगर इस चीज़ में है कि ये ऐसा है तो वो वैसे ही रिएक्ट करेगा, वैसे ही सोचेगा। जब हम नींद में भी होते तो सपने देखते हैं, वो कुछ नेचुरल है नहीं, वैसा कुछ हो नहीं रहा है, फिर भी हमें फीलिंग सब कुछ होने लगता है वैसे ही। किसी जैसे एक बार कहीं पे बैठे थे तो वहाँ पे कोई भाई आया और उसने कुछ वहाँ की बता दिया, यहाँ पे इवेल सोल होता है, यहाँ पे ये होता है। तो वो बहन कह रही थी अगले दिन मुझे आना पड़ रहा था, कितना डर लग रहा था और मुझे लग रहा था मेरे पीछे कोई है, कुछ आवाज़ हुई थी। तो हमारा माइंड क्या है, रियलिटी उसको ये नहीं मतलब है कि ये राइट है भी या नहीं है। जो चीज़ उसके मन की होती है या जो चीज़ उसके बुद्धि में बैठ जाती है, ये ऐसा ही है, ये परिस्थिति ऐसे मेरे लिए की गई है, इन्होंने मेरे साथ ही ऐसा किया है, तो फिर उसके अनुभव कैसे होने लगते हैं, वैसे ही होने लगते हैं। एक बार दो मित्र थे, उसमें से एक थोड़ा गुस्से वाला था और बहुत जल्दी छोटी छोटी बात पे उसे फीलिंग आ जाना, नाराज़ हो जाना। तो उसने अपने मित्र से पूछा कि मैं क्या करूं। वो थोड़ा सत्संगी वाला था, साधु संत वाला। तो उसने बोला कि मैं एक महात्मा जी के पास जाता हूँ, वो बहुत अच्छा प्रवचन सुनाते हैं, तुम कुछ देर वहाँ जाना, बैठना, तुम्हें अच्छा लगेगा। वो भाई बहुत अच्छी पोस्ट पे था। तो वो भाई जब जाता है उनके पास तो देखता बड़ी लंबी लाइन लगी है और उनको बोलता है कि मेरा नंबर पहले लगा दो, मैं बहुत दूर से आया हूँ और मेरी प्रॉब्लम बहुत सारी है। तो महात्मा जी बोलते हैं कि आप थोड़ा वेट करिए, इनके बाद मैं आपसे मिलूँगा, अलग से मिलूँगा। तो भड़क जाता है, गुस्सा होता है, क्या ये सब ढोंग लगाया है, ऐसा किया है, वैसा किया है। तो महात्मा जो था वो कुछ नहीं बोलता है, चुप रहता है। जब वो अपने दोस्त के पास जाता है और वो बात बताता है कि ऐसा ऐसा है, वो तो ऐसा है, वो तो मिला ही नहीं, वो तो बड़ा अभिमानी है, वो तो बड़ा ऐसा है, तो उसके दोस्त ने बताया कि वास्तव में वो ऐसे हैं नहीं, आपने जो रिएक्ट किया, आपने बताया आप ऐसे हो, और वो चुप रहा, उसने बताया कि वो ऐसा है। क्योंकि अगर सामने वाली आत्मा हमें फीलिंग मिला रही है या कुछ बोल रही है, कुछ कर रही है, तो हमें नहीं बता रही कि हम कैसे हैं, वो अपने आप को प्रेजेंट कर रही है कि हम ऐसे हैं। और हम अपने आप को कैसे प्रेजेंट करते हैं फिर, रिएक्शन करके, कि हम भी तुम्हारे जैसे हैं, देखो बस अंतर ये है कि तुमने ऐसे बोला, हमने ऐसे किया। और फिर क्या होता है जब इस तरीके की फीलिंग होती है, उसके आगे फिर क्या होता है, जब हम किसी से दुखी हो गए, नाराज हो गए, उदास हो गए, फिर क्या होना शुरू होता है, फिर ज्ञान अच्छा लगता है। मुरली में क्या चलता है उस समय, हाँ उसके लिए है। और नहीं भी होगा तो वो, एक भाई ने यहाँ क्लास सुनी और दूसरे भाई को वो कट करके उतना वो उसको भेज दिया, और फिर उस भाई ने हमें फ़ोन करके रात में बताया कि देखो ये उस भाई ने मुझे बोला, ऐसी बात हुई। तो मतलब कितना ज़्यादा होता है कि हम जब मुरली सुन रहे होते हैं या क्लास सुन रहे होते हैं तो हमारा पूरा फोकस होता है कि ये देखा ये बात आ रही ना इनके लिए, और अगर वो व्यक्ति नहीं बैठा है तब तो और ही वो लगेगा कि तो है ही नहीं, किसी ना किसी तरीके से पता चलना चाहिए कि देखा ये आपके लिए था। तो कहीं ना कहीं हमारा माइंड फिर क्या होने लगता है कि कुछ भी मुरली सुनेंगे, क्लास करें, यहाँ तक कि सेवा भी करेंगे, कई बार चेहरे से पता चल जाता है इनके मन में कुछ चल रहा है आज, आँखों से बोलेंगे भले नहीं पर उनकी ऐसे समय पे हमारी वाणी से ज़्यादा हमारे आँखें काम करती, वो इतना स्पष्ट बता देती हैं कि इस आत्मा के अंदर क्या चल रहा है। दूसरा, हमारा हिसाब किताब कम होता है, बढ़ने लगता है फिर चुकतू। वैसे तो उसका जो बैग था वो तो चुकतू हुआ, क्योंकि मान लो किसी ने हमको फीलिंग मिलाया या कुछ ऐसा बुरा किया जो गलत था, हो सकता है गलत भी होगा, लेकिन वो कहीं ना कहीं हो सकता पूर्व जन्म में हमने उसके साथ कुछ ऐसा कर रखा होगा, कुछ ना कुछ हिसाब था। लेकिन अभी हमने क्या किया, फिर वापस उसको, क्योंकि हम बहुत अच्छे घर के ना, कोई खाली हाथ तो भेजेंगे नहीं भाई कुछ ना कुछ दे के ही भेजेंगे। तो होता क्या है फिर, और इसमें फिर क्या होता, हमारे संस्कार फिर एक अलग तरीके के बनने लगते हैं, फिर उस आत्मा के प्रति नफरत आएगी, घृणा आएगी, फिर ऐसा भी होता है कि हम उनसे ओम शांति नहीं करेंगे, वो करें तो चलेगा। एक भाई था, वो हम दोनों ही भाई को जानते थे, दोनों में बहुत अच्छी सेवा होती थी, सब साथ आना जाना, मधुबन पार्टी में आना, बहुत सेवा करना। फिर जब मधुबन आए तो पता चला दोनों में कुछ नाराज़गी हो गई, और फिर एक दूसरे से ओम शांति भी नहीं, यहाँ तक कि ट्रेन की टिकट में भी उसको दूसरी बोगी में करना पड़ता, उसको दूसरी, झगड़ा नहीं करेंगे पर बात भी नहीं करेंगे, बिल्कुल नहीं, ओम शांति भी नहीं। तो हॉस्पिटल में आए थे दोनों, तो हम एक के साथ आ रहे थे, उसको बहुत समझाया कि कम से कम झुक जाओ, ये तुम्हारी आदत, ये जो संस्कार बनेगा ये तुम्हें तरक्की पे नहीं ले जाएगा। तो उसने बहुत माना, कहा कि हाँ मेरा ये देह अभिमान है। तो वो भाई सामने सर, हमने कहा ओम शांति करना, उसको बोला करेंगे करेंगे, जैसे पास आया नहीं गड़बड़ हो जाएगा। ऐसे ना जाने हमारी लाइफ में, ब्राह्मण जीवन में ना जाने कितने ऐसे लोग होंगे जिनको हमने देखा होगा जो आपस में बिल्कुल भी हम इसके हाथ का नहीं खाते। सोचो उसका हाथ अगर लगा भी है तो उस पर तो बहुतों का धन लगा है, किसी ने धन लगाया, किसी माता ने, किसी ब्राह्मण आत्मा ने उसे बनाया है, हो सकता हो शायद उस पर बहुत, और सबसे मुख्य बात है किसी का भी लगाओ वो किसके यज्ञ का है। भक्ति मार्ग में अगर जरा सा प्रसाद जमीन पे भी गिर जाता है तो हम उसे कैसे खाते हैं, उसे उठाते हैं, माथे से लगाते हैं, फिर खाते हैं। और यहां हमें ये बात पता है कि ये यज्ञ का है, और फिर भी अगर हमें ये पता चल जाता है ये इसने दिया है, फिर क्या होता है। वास्तव में उस आत्मा की शायद वृत्ति ना भी हो, लेकिन हमारी अपनी कहीं ना कहीं सोच जो बताए ना, मान्यता बन जाती है कि ये ऐसा ही है। हम सब भी देखे, कोई भी कंटिन्यू तो विकार में नहीं रहता है, कंटिन्यू कोई को बोल दो क्रोध करे, कंटिन्यू तो हाँ, जो व्यक्ति फीलिंग में किसी बात से किसी को ले आया, कुछ ऐसा बोल दिया या कर दिया, वो तो भूल जाता है करके, लेकिन भुगतना किसे पड़ता है जो उसको पकड़ के बैठा है। क्योंकि हम कहीं ना कहीं सारे लोग कुछ ना कुछ चीज़ों में उसी अतीत में जी रहे होते हैं, उसी पल में जी रहे होते हैं कि एक दिन उस भाई ने या उस बहन ने मेरे साथ ऐसा किया था, और उस अतीत में हम उसके साथ वर्तमान में भी वैसे ही रहते हैं और आने वाले भविष्य में भी वैसे ही रहते हैं, बल्कि हो सकता है शायद भविष्य में और ज़्यादा तरक्की कर लेंगे, और ज़्यादा हमारे रिलेशंस या हमारा व्यवहार उसके साथ अलग हो जाता है। तो एक तो ये बात हो गई कि इन सब चीज़ों से क्या होता है, हमारे एक तो संस्कार जो बनते हैं वो भागने वाले, डरने वाले बनते हैं, फिर एक टाइम ऐसा आता है कि वो ऐसी आत्मा फिर किसी के भी साथ रहना मुश्किल होती है। जैसे हमारे एक कनेक्शन का एक भाई है, वो इतने सेंटर पे जा चुका है, उसको लगता है कि ये बहन ठीक नहीं है, फिर उस बहन से कहेगा नहीं मुझे इस बहन की मुरली नहीं सुननी, ये बहन जब सुनाएगी तो फिर उससे झगड़ा, फिर उससे कम से कम वो 3 सेंटर और 2 गीता पाठशाला चेंज कर चुका है। अब ले दे के अपने घर में ही बैठा है, और अभी भी जब हमारे से फ़ोन से बात होगी तो कहेगा प्रभाकर भाई क्या करें, मेरे को अच्छे लोग ही नहीं मिले, जो मिलते हैं सुई चुभोने वाले मिलते हैं, जो मिलते हैं ऐसे मिलते हैं। वैसे पहला निशाना हम भी थे उसके लिए, लेकिन हमने कभी भी उसके साथ दूरी नहीं की। हमें याद है एक बार हम 9 बजे से रात 12 बजे तक बैठे रहे, उसने बहुत निगेटिव बोला, लेकिन हमें पता था ये आज का समय जो हम दे रहे हैं ना ये बहुत रंग लाएगा आगे जाके, और उसका फल ये है कि आज वो भाई कई बार कहता रहता है हमसे कि हमने बहुत आपके साथ खराब किया, कुछ भी होगा हमें पूछेगा आप क्या करें, ऐसे क्या करें। तो कहीं जब हम भागने लगते हैं जिन लोगों से, जिन व्यक्तियों से, वो एक हमारा संस्कार बन जाता है, और फाइनल पेपर हमारा कैसा होगा। अगर हमारे अंदर डर का संस्कार बन जाएगा, कभी सोचा है जो हम इतनी मेहनत करते हैं, सुबह अमृत वेले उठते हैं, बाबा से सकास लेते हैं, भोजन में त्याग करते हैं कि हमारा भोजन अच्छा हो, बाहर का ना हो, मुरली पढ़ते हैं, रिवीजन करते हैं, कई लोग अपनी जॉब छोड़ देते हैं, अपना लौकिक से झगड़ा करते हैं, ये सब हो रहा है उस अंतिम समय के लिए जो 1 सेकेंड का पेपर होगा, जहाँ पर हमें नहीं पता कि कौन आत्मा हमारा पेपर लेने के लिए खड़ी होगी, किस तरीके की परिस्थिति होगी, किस तरीके के लोग हमें मिलेंगे। आप सोचो अगर अभी छोटे छोटे पेपर में ही हम स्थिति ऐसी बन जाती है, नाराज़गी आ जाती है या रूठना आ जाता है, तो उस पेपर में अगर उसी आत्मा ने हमारा पेपर ले लिया तो, बल्कि उसके साथ तो हम और बढ़ाते जा रहे हैं। शायद एक दिन पहले जो हुआ था, अगर उसके बाद 2 साल देखो, 3 साल देखो, और बढ़ता जाता है। और अगर वो चैप्टर से अगर हम भाग गए, अगर उसे क्लोज नहीं किया, तो अंतिम वही चैप्टर फिर से खुलेगा हमारा लास्ट में। क्योंकि कई बार एक आपने भी सुना है, वो रशिया की जो बहन थी, उन्होंने बताया था कि बचपन में जो हिस्ट्री क्लास में एक चैप्टर था उन्होंने नहीं पढ़ा, उन्होंने बोला ये हिस्ट्री क्यों पढ़ना, इससे क्या लेना देना मेरा। और जब उनको वहाँ का परमानेंट के लिए लेना था तो वहाँ की हिस्ट्री पढ़नी ज़रूरी थी, उन्होंने बताया ये वही चैप्टर था जो मैंने छोड़ा था उस समय। संतोष बहन, हाँ, तो मतलब जो अब हमारे जीवन में जो भी आत्माएं हमें मिल रही हैं, वो कहीं ना कहीं किसी जन्म में हमने उनके साथ क्या किया था, अपना चैप्टर अधूरा छोड़ा था। अब वो हमारा वो चैप्टर फिर से पूरा करने आएगी जहाँ से छोड़ा था ना। वैसे होता है कि कई लोग किसी को पैसा देते हैं, वो लेके तो भूल जाते हैं पर देने वाले को हमेशा याद रहता है, और अगर याद नहीं आता है तो और ज़्यादा वो लगता है कि मैंने तो लिया ही नहीं था, मैंने तो दे दिया था। और इस जन्म में भी ऐसे ही होता है कि हमारे सामने भी कई ऐसी आत्माएं आ गई हैं जो हमें याद ही नहीं है कि इनके साथ हमने क्या दिया था, क्या लिया था। और अब जब वो ले लेती है हमारे से हमारी स्थिति, ले लेती है ना, तो फिर क्या होता है, शायद हमने भी कभी किसी जन्म में बहुत लंबा उनसे लिया होगा। आज तो फिर भी सौदा बहुत सस्ता है, भगवान की गोद में बैठ के उतार रहे हैं 50% डिस्काउंट। अच्छा है ना, लोग खुशी होती है मार्केट में देखते, अगर एक रुपया भी छोड़ दिया ना दुकानदार ने सब्जी पे, तो बड़ी खुशी होती है, भले चाहे उसने 10 रुपया ज्यादा बता के लिया हो, लेकिन उस एक रुपये के छोड़ने की खुशी होती है। यहां हमको खुशी हो रही कि संगम युग पे बाप की गोद में बैठकर हम अपना हिसाब किताब चुकतू कर रहे हैं। संसार वालों के पास ये ऑप्शन है ऐसा कुछ, लेकिन हमें कभी कभी हम देखते हैं कि शायद संसार वालों से ज्यादा हम लोग दुखी होते हैं। लौकिक में देखो, कभी कोई आपस में दोस्त यार होते कितना एक दूसरे को बोलेंगे, कोई नाराज नहीं होगा, कोई दुखी नहीं होगा, सब मस्त रहेंगे। लौकिक में भी पति मारे कूटे, बच्चा चाहे जितनी भी गाली दे, छोड़ते हैं क्या किसी को, बड़ा मजा आता है उसमें। तो यहां तो किसी ने अगर ओम शांति नहीं किया या किसी ने कुछ ऐसा कर दिया तो क्या होता है, दुश्मनी, दुश्मन खड़ा कर लेते हैं हम वैसे अपने लिए। और वो हम तो आगे बढ़ते, वो हमें रोज सकाश देगा, अमृत वेले मुरली में देगा। और सोचो ये जो एनर्जी हम घड़ी घड़ी ऐसे क्रिएट करते रहते हैं, ऐसे आत्माओं को जन्म देते रहते हैं जो हमारे लिए निगेटिविटी भेजते हैं, तो हमारे पुरुषार्थ में, हमारी स्थिति में क्या होता है। कभी महसूस किया, जब फर्स्ट टाइम या जब नए नए ज्ञान में आते हैं तो उस समय में कैसे अनुभव होते हैं, उस समय वाइब्रेशन, उस समय हमारी फीलिंग्स, और अब कैसे होते हैं। अब तो सब लगता है कि जैसे उस समय, एक कारण ये भी होता है कि हमारे ऊपर जो हिसाब किताब होता है वो बहुत कम होता है, क्योंकि हमने द्वापर रजो प्रधान युग है और यहाँ आने के बाद बहुत बनता है, क्योंकि चुकतो भी होता है और हम बनाते भी जाते हैं, और उसमें तो फिर ज्ञान भी होता है, समझ भी होती है, और उसके बाद भी उस स्थिति में उसमें हम निकलते नहीं। बहुत सारे लोगों को देखा है जो उस एक बात पे, बहुत छोटी छोटी बात पे बिल्कुल इतनी, बल्कि दोस्ती कभी निभाई नहीं होगी जिंदगी में इतनी शिद्दत से जितनी शिद्दत से दुश्मनी निभाते हैं। मरना पसंद करेंगे पर इसके हाथ का खाएं। हमें याद है, हम नए नए थे, हमें पता नहीं था, एक बहन को हमने कहा रोटी ये लो, और उसने रोटी तोड़ी और मुंह में रखा, कि रोटी बड़ी सॉफ्ट है कहां से, उसे जब पता चला इस बहन ने बनाई है, उसे मुंह से निकाल के थूक दी। तो सोचो कितना ज्यादा हमारे अंदर ये भाव है, जबकि हाँ ऐसी बातों में बहुत धारणा मजबूत होती है, और बाहर जाएंगे कोल्ड ड्रिंक है, ये है, चलेगा। बाबा ने कहा ना, लाचारी हालत में दृष्टि देके खा लो। हाँ, और हाँ मशीन मेड होता है ये तो किसी ने छुआ थोड़ी ना है। और अगर तो हमने उसको इतना बोला, हमने कहा कि बहन ये बाबा के घर की है, ना जाने कितनी माताओं ने पेट काट काट के यहाँ भेजते हैं। हमने खुद सेंटर पे भी रहे हैं, हम कई महीने सेंटर पे सेवा करी, सब देखा है। कई कई गरीब माता एक एक रुपया लाते हैं। सोचो वो भगवान का एक मीरा के लिए क्या कहते हैं, उसने उसका प्रेम बल इतना ज्यादा था कि उस जहर को भी क्या कर दिया, अमृत कर दिया। तो क्या अगर एक आत्मा ने छू लिया, टच कर लिया, तो क्या हमारा प्रेम बल इतना वीक है, इतना कमजोर है, और उसमें और लोगों की भी तो दुआएं लगी हैं। लेकिन कहीं ना कहीं हमारे माइंड ने वो सेट कर लिया है, और वास्तव में शायद उस आत्मा के वो वाइब्रेशन होते भी नहीं है, वो हमारा ही वाइब्रेशन। अगर खिला, एक दो बार हमने वो बहन को खिला भी दिया ऐसे ही, और फिर पूछा कि योग कैसा था, बहुत अच्छा, बाबा तो बहुत सकाश देता है। बताया नहीं, बताया नहीं, और एक दो लोगों को पता था, बोला अगर बता देते तो फिर तुम्हारी जो हालत थी सोच लेना क्या होती। नहीं, वो हो नहीं, हो जाता है, वो हो जाता है, क्योंकि क्या है, हम क्या चेक करने के लिए, हमने भी किया, हमने भी कई बार किया, क्योंकि हम कह, एक बहन तो उसका नहीं खाया था, तो एक भाई को बोला कभी हमें उसका खिला के देखना, और बताना नहीं किसने बनाया था। तो हम देखते कुछ नहीं होता है, वो हमारे ही थॉट्स होते खाली कि ये ऐसा है वो वैसा है इसमें, क्योंकि कहीं ना कहीं हम सारे वीक हैं, और हम दूसरों के पुरुषार्थ, दूसरों की स्थिति के आधार पर चल रहे होते हैं। जब तक जिस आत्मा का साथ हमें अच्छा लगता है, जिस आत्मा का रोल अच्छा लगता है, ज्ञान अच्छा लगता है, तो हमें वो आत्मा बहुत अच्छी लगती है, होता है, पर वो दूसरी रीति से है। अगर जैसे हम बहुत वीक हैं, कमजोर हैं, अब उसमें किसी ने निगेटिविटी से कुछ बनाया है, दिया है, तो वो हम पे असर करेगा। नहीं, हम तो समझते हैं कि उसमें फिर हम कमजोर हैं, उसमें ये समझना चाहिए मैं कमजोर हूं, मैं वीक हूं, इसलिए मुझे अभी उसके हाथ का नहीं खाना है, और वो कमजोरी जाएगी नहीं। लेकिन क्या, नहीं बहुत, अरे बहुत ज्यादा होते हैं। एक जगह एक बहन को बुलाया, बोला कि दीदी, एक बड़े भाई ने, हम भी थे, तो बोला आप आके क्लास कराना, और वो दीदी आएंगे तो वो जो है अपना अनुभव सुनाएंगे। तो बहन ने, और हम देखते थे, हम सोचते थे ये दोनों बहनों को देखो कितना अच्छा है, आपस में मिलेंगे, साथ में गले मिलेंगे। बाद में वो बहन क्या कहती, नहीं आप उन्हीं को बुला लेना, भोग भी उन्हीं से लगवा लेना, वहीं करो, हम नहीं आएंगे अगर वो आएंगे। हमारे तो जब ये सुना, हमें तो यकीन ही नहीं, क्योंकि हमने उन दोनों को साथ में देखा, अभी तक भी वो दोनों मिलेंगे ऐसे साथ में, पता नहीं अंदर ये चीज चल रही है। तो क्योंकि वो बात बोली ना, ये डिटैच विटैच कुछ नहीं होता, ये सारा एक अंदर की दुश्मनी होती है। ब्राह्मणों की दुश्मनी बहुत अच्छी वाली होती है, वो बहुत मतलब सजा धजा के उसको निभाएंगे, संसार वालों की तरह नहीं कि एक दिन लड़ लिया अगले दिन दोस्ती होगी। आगे बढ़ाते नहीं, बढ़ती रहती है खुद ब खुद। तो जैसे बाकी चीजों को नहीं करेंगे, धारणाओं को नहीं करेंगे, ऐसे किसी के हाथ का होगा तो क्या बाहर जाते हैं तो खा लेते, सोचते क्या हुआ किसने देखा, लेकिन इस सब चीजों में बहुत चलता है। तो हमारा कहीं ना कहीं हम दूसरे के सुख के, दूसरे के पुरुषार्थ पर, दूसरे के व्यवहार पर जीते। जैसे बिजनेस होता है ना, कि उसने हमारे साथ अच्छा कर रहा है, उसने अच्छा बोल रहा है, तो वो हमें अच्छा लगता है, और जो हमारे साथ बुरा बोल दिया, बुरा कर दिया, तो हमें अच्छा नहीं लगता। जैसे बिजनेस होता है ना, जब तक माल की डिलीवरी अच्छी मिल रही थी तो हम भी अपनी तरफ से अच्छा दे रहे थे, जैसे ही पता चला इनके माल में खोट आ गया, फिर क्या किया, हमने अपना बंद कर दिया। तो इस तरीके की हमारे जो संस्कार बनेंगे, वो कहीं ना कहीं हमें लास्ट में वो दुख ही देंगे। एक प्रतियोगिता थी, आप सब ध्यान से सुनना, ये बात हमें बहुत अच्छी लगी थी, कि अपने आप को चेक करना है कि हम किस जगह पे आते हैं। एक प्रतियोगिता थी जिसमें कुछ आर्टिस्ट को बुलाया गया था, और वहाँ बोला गया था आप लोगों को कुछ ऐसे चित्र बनाने जिसमें खुशी, प्रेम, शांति, ये चीज़ें दिखाई देनी चाहिए, फील होनी चाहिए, रियलिटी हो उसमें। तो उसमें सबने भाग लिया, और सबने बहुत उसको दर्शाने के लिए, किसी ने पक्षी बनाए, किसी ने नेचर का बनाया, किसी ने बच्चे का बनाया, क्योंकि बच्चे को देखे खुशी आ गई, नेचर को देखा शांति का अनुभव हुआ, पक्षी को देखा, लोग जाते ना चिड़ियाघर में देखने के लिए। तो उसमें जब अनाउंसमेंट हुआ कि किसकी पेंटिंग सबसे अच्छी थी और वो दिखाई गई, तो सबने विरोध किया, बोला इसमें ना तो शांति है, ना खुशी है, ना प्रेम है, इसमें तो दुख है, इसमें तो डर है, इसमें तो भय दिख रहा है। उस पेंटिंग में काले बादल बरसते हुए, तूफान, आंधी, ये सब दिखाया था। तो जिसने उसको जज किया था, उसने बोला कि जो रियल शांति है, जो पीस है, वो इसके अंदर है, क्योंकि उसी जगह पर एक झोपड़ी में एक व्यक्ति दिखाया जा रहा है जो बहुत शांत है, जो बहुत खुश है। तो उसने बोला जो आप लोगों ने पेंटिंग में खुशी दिखाई है, शांति दिखाई है, वो बाहर वाली है, वो तब तक है जब तक वो आपकी अपनी नहीं है। और जो वहां पे दिखाया जा रहा है उसमें उसकी अपनी दिखाई जा रही है। तो अगर हम लोग भी देखें तो हम लोग अपनी सुख शांति पर जीते हैं या बाहर की सुख शांति पे? क्या तो ये भी एक अपना प्रश्न है कि हमारी जो स्थिति है, हमारा जो पुरुषार्थ है वो किस आधार पे चल रहा है। लॉकडाउन हुआ या कुछ हुआ, जो क्लास में जो अनुभव यहाँ होता था वो अकेले भी होता है, या ऐसा तो नहीं कि जो वहाँ होता था अब नहीं होता है, उसके ज़्यादा होता है अकेले में? और अगर हमारे सामने कोई पेपर लेने वाली आत्मा आ जाए वो तो हमें सेकंड में परिवर्तित कर देती। बाप बैठा है, इतने साल हो गए, परिवर्तन करने को हो ही नहीं रहा है। हाँ, ये भी बात है। इतनी अव्यक्त मुरली सुन ली, गुलजार दादी को देख लिया, टोली ले ली क्या बुद्धि का ताला तो मतलब ऐसी आत्मा देखो कितनी जल्दी हमें परिवर्तन करती है। एक सेकंड लगता है, दो घंटे का योग, दो घंटे की क्लास और सालों की धारणा कैसे सेकंड में एकदम परिवर्तन कर देती है। और बाप बेचारा, वो बेचारा बैठ के बोल बोल के बोल बोल के, कभी कभी मिलता है तो भी दो घंटे तो बैठ के, तीन घंटे बैठ के सुनाता है ना, रोज रोज मिले तो अच्छा है। तो ये चीज अब देखने की, फीलिंग एक रीति से अच्छी, जैसे हमने बताया कि जैसे वैसे है, तो ये बाहर का ही, क्योंकि बिल्कुल है, बिल्कुल है। हाँ बिल्कुल, फीलिंग कई जगह पे अच्छी भी होती है। जैसे कई लोग बाबा माताओं में थोड़ा ये चीज नेगेटिव भी रीति से, जल्दी रो दिया या जल्दी, कहते ना टंकी भरी रहती है और जरा सा किसी ने बटन दबाया आंसू आ गए। पर ये चीज कहीं हमारी कमजोरी है, पर कहीं कहीं ये कमजोरी हमारी विशेषता भी बन जाती है। जो बाबा से प्रेम का अनुभव जितना ऐसे लोग कर लेते हैं वो इस तरीके के लोग नहीं कर पाएंगे, जो एकदम बहुत कम होता है। फीलिंग वालों को ऐसे अनुभव जल्दी हो जाते हैं, पर वो एक चीज है ना कि जैसे चाकू, या तो किसी का मर्डर कर दो या उससे काट के सेब खा लो, तो दोनों ही चीज है। तो गलत जगह अगर यूज करेंगे तो गलत परिणाम आएगा। तो ये फीलिंग का अच्छा गलत जगह फील वैसे हम करते नहीं, हमको खुद आके सब करा देते हैं। रानी लक्ष्मीबाई के पास अगर ऐसी स्थितियां नहीं आती तो रानी लक्ष्मीबाई बनती? ऐसे ना जाने कितनी राजाओं की रानियां हुई जिनको हम याद रखते हैं। भगत सिंह को क्यों याद रखते हैं? ऐसी अगर मम्मा के जीवन में, दादियों के जीवन में ऐसे संघर्ष आए ना होते तो हम याद। अच्छा, दादियां कितनी सारी आई, इतने लोग आए 400 के करीब, लेकिन हम कितनों को जानते हैं? कुछ ही लोगों को, मुश्किल शायद 100 भी अगर नाम गिनाने को बोल दो कोई 100 भी नहीं गिना पाएगा। तो फीलिंग या ऐसी आत्माएं हमारे लिए तो वरदान है, क्योंकि जो आत्मा हमें ज्ञान योग से सिखा रही है, जो आत्मा हमें प्यार से सिखा रही है, वो जितना अच्छा लेसन नहीं हमें सिखा सकती, उससे अच्छा वो सिखा सकती है। बस ये कि जब वो आत्मा हमें सिखाने के लिए आती है उस समय हम क्या सीख रहे हैं उससे। अब जब कहीं ऐसी बात आती तो हमें क्या लगाना चाहिए, अपने गुण लगाने चाहिए या अपने पुराने संस्कार लगाना चाहिए? अगर मान लीजिए हमें क्षमा करने का गुण बढ़ाना है तो जब तक कोई ऐसी घटना नहीं घटेगी तब तक हम कर पाएंगे? अगर वो ना दे तो, अगर सामने वाली आत्मा बहुत प्यार से दे रही है, हमें मान सम्मान दे मिल रहा है, रिस्पेक्ट रिगार्ड मिल रहा है, तो फिर क्या होता है? वो जैसे कुछ लोग होते हैं ना जो एसी में सारा दिन रहते हैं, कार भी एसी, मकान भी एसी, ऑफिस भी एसी, उनको जरा देर के लिए अगर रूम से बाहर गाड़ी तक जाना उतने में आग लग जाती है। तो कहीं ना कहीं हमने भी अपने आप को, अपने मन को, अपने आदतों को ऐसा बना रखा है कि महिमा मिलते मिलते, मान सम्मान मिलते मिलते, जरा सा उसमें किसी आत्मा ने कुछ छू भर दिया तो उस आग में जल के भस्म होने लगते हैं, और ऐसा जलते हैं कि फिर वो अग्नि हमें वर्षों तक जलाती रहती है। पर जो ऐसी आत्माएं हमें सिखा सकती वो शायद और आत्माएं नहीं सिखा सकती, क्योंकि बाबा ने तो बोला मित्र समझो। हम समझते हैं शत्रु है, लेकिन वास्तव में अगर सोच वो आत्मा कहीं ना कहीं कोई ना कोई गुण नहीं नहीं वो अगर आप पहले से तैयारी करोगे तो आएगा, ये आपकी कमजोरी, क्योंकि पहले आपने उम्मीद रख ली है कि आत्मा मेरे साथ अच्छा करेगी और नहीं किया तब फीलिंग है। अगर आपको पता चल जाए ये भाई आज मेरे साथ पेपर लेगा कोई चीज़ का, पहले से तैयार है और ले लिया तो लगा कि हाँ लिया, ऐसा सोच के रखे थे देता तो ये चीजें मतलब कि हर एक आत्मा कहीं ना कहीं हमारे लिए कोई ना कोई गुण और शक्ति लेके खड़ी है बस। और ये जो हमारे फेस पे सारी चंचल इंद्रियां इसी पे ही हैं, या तो हम इसको अकड़ लेते हैं या उसके आगे अगर थोड़ा सा सिर झुका दो ना तो वो उस शक्ति की वरमाला कहो या जयमाला वो हमारे अंदर डाल देगी। अब देखो कहते ये जितने भी युद्ध हुए देवताओं के असुरों के साथ, राम का हुआ रावण के साथ, कभी रावण आया क्या पहले युद्ध के लिए? नहीं आया। दुर्गा का हुआ महिषासुर के साथ, कभी वो आया पहले? नहीं आया। कृष्ण के साथ कंस ने किया, कंस आया क्या पहले? पहले सबने अपनी जितनी सेना थी सबको भेजा, लास्ट में ही वो आया। और सोचो अभी तो हमारा माया के साथ कोई युद्ध ही नहीं हो रहा है पहले आते तो युद्ध ही नहीं होता है, ये सब सेना है सेनापति, वो तो अभी लास्ट में। अभी जो आत्मा को देख के हम डर रहे हैं घबरा रहे हैं वो तो जो उसका रूप देखने को तो हमें लास्ट में ही मिलेगा, अभी जो देख रहे हैं वो कहीं ना कहीं माया नहीं है, वो हमारे लिए एक साधन है हमें आगे बढ़ाने के लिए, वो हमें सिखा रहे हैं, वो हमें तलवारबाजी नहीं सिखाते, ट्रेंड कर रहे हैं वो हमें उस समय के लिए, क्योंकि ये चीज़ें जो है हमारी लाइफ को, अगर हम अपने गुणों को क्वालिटीज़ को ऐसी जगह यूज़ नहीं करेंगे तो हमारे संस्कार फिर दूसरे वाले बनेंगे, डरने वाले भागने वाले, और आदत हो जाएगी वो एसी वाला जैसे पता है ना, फिर हमें सॉफ्ट जोन पसंद है, इजी जोन, कि जहाँ पे लोग हमें बहुत प्यार से बात कर रहे हैं, हमें सहयोग दे रहे हैं। अगर जिस दिन सहयोग नहीं दिया उस दिन फिर क्या होता है? उस दिन लगता है इसने मेरा अपमान किया, इसे पता नहीं मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ। जानकी दादी कहती मैं कौन मेरा कौन, अगर ऐसी आत्मा ने कुछ कर दिया तब उसे याद दिलाने लगते कि मैं कौन हूँ, पता है तब मैं कौन बदल जाता है। योग में मैं कौन वो अलग होता है, सेवा में मैं कौन वो अलग होता है, और किसी ने पेपर ले लिया तो वहां मैं कौन वो अलग हो जाता है, क्योंकि हम भटकते रहते हैं अपने उसमें। फीलिंग से मुक्त होने के लिए होना है, बिल्कुल होना है, क्योंकि ये कोई हमारे अंदर को ऐसा नहीं है कि हम मतलब कि हमें कुछ तरक्की पे ले जाएगी, बल्कि हमें और कमज़ोर कर देगी, वीक कर देगी। हमारी आदत ऐसी हो जाएगी कि फिर जैसे जैसे हम ऐसे लोग ढूंढेंगे, ऐसे स्थान को ढूंढेंगे कि नहीं हमें मधुबन में रहना है, सेंटर पे कोई बोलेगा नहीं यहाँ नहीं रहना, हमें उधर रहना है, हमें इसके साथ सेवा नहीं करनी, हमें इसके साथ नहीं रहना है, तो ये कहीं ना कहीं हमें वीक करेगी फीलिंग्स, क्योंकि हमें चेंज नहीं करना, इसको अपनी ताकत बनाना है, इसको किसी ऐसी दिशा में लगाना है जहाँ से ये फीलिंग को हमें बाबा के साथ लगाना है। और दूसरी चीज़ है वो आत्मा भी तो उस समय परवश है, हाँ अगर घर में माँ बाप नहीं होते हैं तो बड़े भाई का क्या रोल होता है? वो ऑटोमेटिक संसार वालों को क्या ज्ञान दिया जाता है कि अब आओ तुम्हारी माँ मर गई बाप मर गया, मैं तुम्हें बताता हूँ कैसे अपने भाई बहनों को संभालना है। अगर आज इस घर में हमारे बाबा मम्मा स्थूल में नहीं है, दादियाँ नहीं हैं, हमने दादियों की पालना लेनी है, तो हमारा रोल क्या है? हम सुनाएंगे तो बहुत उससे कि एक बार ऐसा हुआ था और दादी ने मुझे कुछ नहीं बोला। हमने कभी वैसा किया है किसी के साथ, किसी ऐसी आत्मा के जिसने मेरी ग्लानी करी, मेरा अपमान किया, फिर भी सहयोग क्या कहता है? जो आत्मा खुश है उसे खुश कर देना, जो आत्मा शांति है उसे शांति का अनुभव कराना। सहयोग वो कहता है जिस समय उस आत्मा को जरूरत है, अशांत में है, तकलीफ में है, या डिप्रेशन आ गया है, या दिल शिकस्त हो गई, आपसे नाराज हो गई है, या अपने अंदर ही अंदर वो परेशान है, उस वक्त ऐसी आत्मा को ज़रूरत होती है। ऐसे समय पे नहीं कि चलो आज हम सब मिलके ये सेवा करते, चलो हम ये करते हैं, तो जहाँ उस आत्मा की ज़रूरत है उस समय उसे मुक्त कराना। और अगर हमसे कोई, अगर हम फीलिंग में हैं तब तो थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि जब फीलिंग में आ जाते हैं तब हमारे जो संस्कार आदत वो स्वतः काम करने लगते हैं। अगर हम फीलिंग से मुक्त हैं, हमारी वजह से कोई आत्मा फीलिंग में आई तो उसके लिए हम काम कर सकते हैं, क्योंकि परम धाम तो हम आत्माएं क्लीन होके ही जाएंगे। तीन तरीके से आत्मा होगी, या तो वो अपने पुरुषार्थ के बल से हो जाएगी क्लीन, या अगर जिस आत्मा से दुखी है नाराज परेशान या उसकी शक्ति से हो जाएगी, या तो फिर लास्ट का जो बाबा ने बताया धर्मराज की सजा। यहाँ तक कि जब अगर हम फीलिंग से मुक्त हैं, हम नहीं है पर हमारी वजह से कोई आत्मा फीलिंग में दुखी है, उसके वाइब्रेशन हमारे तक भी आते हैं। ये एक बाबा की बहुत शॉर्ट में पूरा करते हैं, एक बहन से सुना था उसको, वो अनुभव दादी ने सुनाया था कि मनोहर दादी की शायद ये बात है और आपने भी सुनी है, कि जहाँ तक मनोहर दादी की है, बाबा ने खबर आई थी कि ये दादी की जो माता जी है बहुत रोती हैं, बहुत दुखी हैं और ऐसा लग रहा है कि वो मर जाएंगी, और बाबा को बताया गया तो बाबा ने बोला बच्ची ऐसी ऐसी बात है, तो दादी ने बोला तो बाबा क्या हुआ, मैं तो नष्टो मोहा हूँ, शरीर छोड़ना है तो छोड़ दे। तो दादी अपनी तरफ से क्लीन है, तो बाबा ने बोला 50% पुरुषार्थ है ये आपका, बाकी 50% अभी करना बाकी। तो बाबा ने उन्हें 3 या 6 महीने का समय दिया था, बोला इस समय आपको इतना पावरफुल योग करना है कि आपके योग बल से वो आत्मा की वृत्ति, वो आत्मा का परिवर्तन हो जाए। बाबा ने 3-4 शर्तें रखी थी। पहली शर्त रखी थी कि जब यहाँ से ये समय पूरा होने के बाद बाबा भेजेगा तुम्हें उसके पास, पहली चीज कि देखते ही वो तुम्हें गले ना लगाए, दूसरी शर्त थी कि उसके आंख से आंसू ना निकले, तीसरी शर्त थी कि वो अपने हाथ का बनाया हुआ कोई खाना तुम्हें नहीं खिलाएगी, और एक दो और थी वो भूल रहे हैं, और एक जो थी बाबा ने बोला था ज्ञान का थोड़ा सा शब्द ऐसा मारना उसमें इतनी शक्ति भरी हो कि वो सीधा पंछी बाबा की गोद में आके गिरे। अब सोचो कितना बड़ा चैलेंज है, एक तो है कि हम पहले मुक्त हों, हम अगर खुद को ही नहीं कर सकते तो दूसरे का तो प्रश्न ही नहीं उठता कर पाएंगे। और दादी ने फिर किया, फिर भेजा और दादी ने बताया सक्सेस, उसने माता ने देखा तो उसके आंसू भी नहीं निकले, फिर दादी ने बोला कि उसने बोला हम बनाए, तो दादी ने बोला नहीं हम अपना बर्तन लाएं, हम अपना बनाएंगे, तो दादी ने इतना बोला कि तुमको बाबा याद कर रहा है, बाबा बुलाता है मेरी बच्ची कहाँ है, तो चलोगी, तो उसने बोला हाँ चलेंगे। सोचो कितनी बड़ी शक्ति है योग बल में। अगर ये योग बल से दादियों ने दूसरी आत्मा की वृत्ति को बदल दिया, दूसरी आत्मा की निगेटिविटी को बदल दिया, तो क्या इसी योग बल से हम खुद की वृत्ति को नहीं बदल सकते, खुद हम फीलिंग से मुक्त नहीं हो सकते? हमें तो ऐसा लगता है कि अगर ऐसी आत्माएं आना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ऐसी आत्मा जो हमें लेसन में मजबूत करके जाएंगी वो बाकी लोग नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ऐसी आत्मा सोचो वो अपनी स्थिति से गिर रही है, हमारा हिसाब किताब चुकतू करवा रही है, और भविष्य के लिए वो शक्ति भी दे रही है कि जो हम अपने फाइनल पेपर में पास हो सकें, तो सोचो उसके तो ऋणी हो जाना चाहिए, कौन इतना करके देगा। अगर मान लो कि हमारा हिसाब किताब जिस हिसाब से और 5 साल के बाद जिस गति से हम चल रहे हैं हम अपनी स्थिति को प्राप्त करें, अगर ऐसी 4-5 आत्माएं मिल जाएं और हमें जल्दी हिसाब किताब चुकतू करवा दे, तो फिर लेकिन उस जगह हमारा हिसाब किताब नहीं बनना चाहिए, ठीक है वो तो बनेगा, लेकिन इसमें भी क्या होता है, रहम आता है ना। अगर किसी को हम कोई काम बोलते हैं कि भाई हमारा ये काम शांतिवन तक कराया ना, और हमें पता चल जाए हमारी वजह से उसको चोट लग गई, ये लग गया, तो हमें लगता है मेरी वजह से लगा, मेरी वजह से इसका, तो उसका ध्यान हम इसलिए रखें क्योंकि मेरी वजह से हुआ है। तो सोचो अगर किसी आत्मा ने हमें शक्ति का पाठ पढ़ा दिया, रहम का पाठ पढ़ा दिया, क्षमा करने का गुण धारण करवा दिया, धैर्यता की शक्ति बढ़ा दी, तो ऐसे आत्मा के तो हमें ऋणी हो जाना चाहिए कि जिस वक्त उसे सबसे ज्यादा जरूरत होगी इसी गुण से हम उसकी पालना करेंगे। ठीक है, बहुत लंबा हो गया, ओके, ओम शांति।